अध्याय 6। परमेश्वर सदा अपने परिवार के साथ है। मैंने कुछ स्पष्ट बिंदुओं की समझ देते हुए पिछले अध्याय का अंत किया है। मसीह ने पुनरुत्थान प्राप्त किया है। उन्होंने क्रूस पर जो कार्य किया और उसके बाद पुनरुत्थान पाए, उस कार्यों पर विश्वास करने वाले हरेक व्यक्ति अनंत जीवन पाते हैं। पर हम मसीह के राज्य के सदस्य हैं। कुलुसियों 1:13। वो राज्य अभी भी उसके पूर्ण रूप में नहीं आया है। ऐसे ही शैतान और परमेश्वर के पतित हुए पुत्रों के पराजय और विनाश की बात भी उतनी ही सही है। उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। परमेश्वर के राज्य के कोई भी सदस्य के ऊपर शैतान के पास कोई दावा या अधिकार नहीं है, और मृत्यु पर भी कोई अधिकार नहीं है। हम यीशु के द्वारा परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, और यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। इसलिए हमें यीशु और परमेश्वर पिता के साथ अनंत जीवन के लिए सजीवन किया जाएगा। रोमियो 6:8-9, रोमियो 8:11, पहला कुरिन्थियों 6:14-15-42-49, आकाश के अधिकार के हाकिम जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, इफिसियों 2:2, वो अभी भी कार्य करता है। अंधकार के हाकिम का अधिकार ले लिया गया है, पर वे अभी तक आधीन नहीं हुए हैं। वे हारे हुए हैं, फिर भी अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं। जो कोई व्यक्ति यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करता है, उसे अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया गया है। कुलुसियों 1:13, परमेश्वर का राज्य वृद्धि प्राप्त कर रहा है और अंधकार का राज्य घटता जाता है। भविष्य की ओर लक्ष्य रखने के बजाय जगत के दुखों और दुष्टता में खो जाना सरल है। कई बार यह याद रखना कठिन बन जाता है कि यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस बुरे संसार से छुड़ाए। गलतियों 1:4, बाइबल इस दुविधा का इनकार नहीं करता है। बाइबल तो ईमानदारी के विषय में बात करता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। रोमियो 8:18-21, कहानी का आश्चर्यकारक बिंदु। मैं आपका ध्यान इस बात के अद्भुत अंत पर खींचना चाहता हूं। आप जानते हो कि हरेक ऐतिहासिक महान कहानी का अंत यादगार होता है। बाबिल की बात भी इससे अलग नहीं है। अगर आप वीणा और बादलों की अपेक्षा रखते हो तो आप निराश होंगे। हम हमारी अपनी विचारधारा के अनुसार बाइबिल की कहानी के अंत के कार्य की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम मृत्यु नहीं पर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यह बात रोमांचक लगती है, पर अनंत जीवन के बारे में ज्यादा कहा गया नहीं है। जो वर्णन किया गया है वो तो गुणवत्ता के बारे में नहीं, वरन सिर्फ समय काल का ही वर्णन है। जब हम कहानी के अंत के तौर पर हमारे मनों में नई वैश्विक अदन वाटिका में जो जीवन होगा उसके विषय में विचार करेंगे, तब हमें अनंत जीवन की गुणवत्ता दिखाई देगी। बाइबिल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य अदन वाटिका की कल्पना के साथ कहानी का अंत करता है। प्रकाशित वाक्य 21:22, वहां परमेश्वर है, स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया है, यीशु वहां है, वहां जीवन का वृक्ष है। यह अदन वाटिका तो मूल अदन वाटिका से अच्छी है। दुष्टता को दूर किया गया है, अब जगत में विद्रोह नहीं होगा। पूरा जगत पूर्ण रीति से श्रेष्ठ बनाया गया है। पौधे, प्राणी और मनुष्यों में मृत्यु या रोग नहीं है। कोई शिकार या हिंसा नहीं होगी। यह तो हमने जिसकी कभी भी अपेक्षा नहीं की थी, ऐसा जीवन होगा। अदन वाटिका के बारे में यह दृष्टिकोण हमें बाइबिल जिस बात की चरम सीमा पर भार देता है उसकी ओर ले जाता है। मैंने पहले बताए गए रोमियो 8 का शास्त्र भाग हमारी सोच को परमेश्वर की योजना की चोटी की पराकाष्ठा, यानी कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की और परमेश्वर के संतानों के महिमा की बात के साथ एक रूप करती है। हाँ, सृष्टि खुद नई होने की इच्छा रखती है, पर यह छुटकारा परमेश्वर के मानवीय परिवार के महिमावान होने के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर जो कार्य कर रहे हैं उसका अंत हमारे द्वारा होगा। उनके बच्चे होने के तौर पर हमारी पदवी हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति में रहेगी, और यही तो बाइबल की कहानी का मुख्य भाग है। हम जहां रहेंगे उसका दृश्य अद्भुत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में बताई गई नई अदन वाटिका का अंतिम दर्शन हमें इस बात को बताता है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह दुल्हिन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रकाशित वाक्य 21:1-3। सनातन पहचान। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना, परमेश्वर के पुत्र का महिमा, यह शब्द हमें बताते हैं कि एक दिन हमें रूपांतरित करके यीशु के जैसे बनाया जाएगा। प्रेरित यूहन्ना ने कहा है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना 3:2। दूसरे दो शास्त्र भागों में यही विचार दूसरी रीति से बताया गया है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। रोमियो 8:29। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। फिलिप्पियों 3:20-21। हमारा मकाम तो परमेश्वर के पूर्ण स्वरूप और प्रतिमा यानी कि यीशु जैसा बनना है। उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। बाइबल पुनरुत्थान और रूपांतर के साथ हमारी कहानी का अंत करता है। हमें अनंत जीवन के लिए उठाया गया है, और पुनरुत्थान पाने के बाद जैसा महिमावान शरीर यीशु का था, ऐसा महिमावान शरीर हमें भी दिया जाएगा। पौलुस उसे स्वर्गीय शरीर कहता है। पहला कुरिन्थियों 15:35-58। हमारा आखिरी मकाम और महिमावान होने के विषय में मेरा पसंदीदा शास्त्र भाग थोड़ा ज्यादा अस्पष्ट है। वे तो इब्रानियों की पत्री में बताया गया वो दृश्य है जहां यीशु हमें परमेश्वर का और परमेश्वर को हमारा परिचय करवाता है। यीशु परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के स्वर्गीय पुत्रों के आगे खड़े रहते हैं। यीशु हिम्मत से अंगीकार करते हैं कि वे हमें अपने परिवार के सदस्यों के तौर पर अपने भाई कहने से नहीं लजाता। इब्रानियों 2:11। और उसके बाद परमेश्वर को और अपने परिवार के अलौकिक सदस्यों को कहते हैं कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह, देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इब्रानियों 2:12-13। आप परमेश्वर के परिवार के कानूनी तौर से और हमेशा के लिए सदस्य बने, यह आपका आखिरी मकाम है। अंत में आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य रहेंगे। परमेश्वर ने शुरुआत से ऐसी इच्छा रखी थी, इसलिए पूरी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है। अनंतकालीन सहभागिता। क्या आपने नई सृष्टि में यानी स्वर्ग में जीवन कैसा होगा उसके विषय में कभी बात की है? मैंने बहुत लोगों को सदाकाल स्तुति आराधना की सभा या तो यीशु के साथ कभी भी खत्म न हो ऐसे प्रश्न और उसके उत्तर या तो महिमावान कलीसियां इकट्ठी होगी ऐसे वर्णन करते हुए सुना है। आखिर में जो बात है वो मेरे जैसे अंतर्मुखी लोगों को डरा देती है। हम संपूर्ण की गई स्वर्ग रूपी अदन वाटिका में हमारा जीवन कैसा होगा उसके विषय में बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, पर बाइबल उस अनुभव के विषय में ज्यादा नहीं बताती है। वो जो कुछ कहता है वो सिर्फ ऊपर बताए गए अनुमानों के जैसी ही बात करता है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:21। एक दिन हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:3। यह वाक्यों का क्या अर्थ है? हम इस प्रश्न को पूछकर शुरुआत कर सकते हैं कि वर्तमान में देशों के ऊपर कौन राज कर रहा है। उसका उत्तर है, परमेश्वर ने बाबिल के समय पर अपने पुत्रों को देश बांट दिए थे, वे पतित हुए परमेश्वर के पुत्र। दूसरे शब्दों में कहे तो अभी तक सब देश या तो अधिकांश देशों के ऊपर परमेश्वर ने पूरी रीति से दावा नहीं किया है। परमेश्वर के राज्य की वृद्धि तो क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। उसके विषय में हमने देखा है कि उसकी शुरुआत तो हो चुकी है पर उसकी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब वो प्रक्रिया पूरी होगी तब विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हम परमेश्वर के पुत्रों का न्याय करेंगे और उनकी पदवी प्राप्त करेंगे। हम हमारे राजा और भाई यीशु के साथ देशों के ऊपर राज करेंगे। जब भी इस बात के विषय में विचार करता हूं तब मुझे कुछ अनिवार्य प्रश्न सुनने को मिलते हैं, जैसे कि हमें कौन सा कार्य दिया जाएगा, क्या कुछ विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों से ज्यादा अधिकार दिया जाएगा, क्या मैं दूसरे विश्वासियों का अधिकारी यानी मालिक बनूंगा, हम सब कैसे अधिकारी बन सकेंगे, क्या हमारे कार्य इसका निर्णय करेंगे कि कौन किसके ऊपर राज करेगा। हम समझ सकते हैं कि ये सभी प्रश्न जगत में जीने वाले अपूर्ण लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। हमारी सोच इस नुकसान पहुंचाए गए और अपूर्ण जगत की वजह से दूषित हुई है, पर बाइबिल हमारे अंतिम मकाम को अधिकारी या कर्मचारी के बीच के संबंध के जैसे नहीं बताता है। वो तो पिता और पुत्र का संबंध बताता है। परमेश्वर के बच्चे होने के तौर पर हमारे साथी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु के साथ काम करेंगे, जहां मनुष्य और अलौकिक व्यक्ति साथ रहेंगे। अब हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो इरादा रखा था वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे उस चित्र को देखते हैं। परमेश्वर के सभी बच्चों को परमेश्वर के जैसे हमारे सनातन पिता के स्वरूप में बनाया गया है। कहानी का बिंदु तो यह है कि नई अदन वाटिका में हमारा अधिकार तो अधिश्रेणी जैसा नहीं पर पारिवारिक सहभागिता का होगा। जब परिवार के सभी सदस्य महिमावंत होते हैं तब अधिश्रेणी की देखरेख रखने की जरूरत अदृश्य होती है। ईमानदारी से कहूं तो हम इस विचार को समझ नहीं सकते क्योंकि हम भ्रष्ट हुए जगत में जी रहे हैं। परमेश्वर हमें चाहते हैं, परमेश्वर आपको चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उन्होंने जैसी इच्छा रखी है वैसी ही आप उनके साथ जीवन का अनुभव करें, और एक दिन हम वो अनुभव प्राप्त करेंगे। बाइबल कहता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9।